ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः, अथ ध्यानम्। ॐ नागाधीशुर्विष्टराम फणिफणोत्तम सौरुरत्नावलि भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवां कनील्यां पद्मावतीं चिंतये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूं। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषि रुवाच इत्याक्रण्य वचो देव्या सदूतो अमर्ष पूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्या सुरार्त तथा सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम धूम्रलोचनम। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वयि सैन्य परिवारिता तामानय बला दुष्टाम केशाकर्षण बहवलाम तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वो तिष्ठते अपरा साहंतव्यो अमरोवापी यक्षो गंधर्व एव वः। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे जबरदस्ती यहां ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि रुवाच तेनाज्ञप्त सततः शीघ्रम स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः खष्ट्या सहस्राणाम असुराणाम द्रुतम ययौ सा दृष्ट्वा ताम ततो देवीं तुहनाचल संस्थिताम जगाद्दोच्चैः प्रायहीति मूलम शुंभ निशुंभयौ न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तार्मुपैष्यति ततो बलान्यामेश केशाकर्षण विह्वलाम। ऋषि कहते हैं शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ नुशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्योवाच दैतेश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृता बलान्यसी माम एवं तथा किम ते करोम्यहम। तब देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूं। ऋषि रुवाच इत्युक्तः सो अभ्यधावत्ताम असुरो धूम्रलोचना हुंकारेणैव तं भस्म साचकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धं महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका बवर्षसाय कैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति प्रश्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुर सेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्। ऋषि कहते हैं देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। केशांचित पाटया मास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान पृथक विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरं कोष्ठादन्येषां धुत्केसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीति महात्मनः तेन केसरीणां देव्या वाहनेनाति कोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्सनं देवी केसरीणा तथा। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन तथा महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की भारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसके ओंठ कांपने लगे। चुकोप दैत्याधिपति शुंभा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामाश्चतौ चंड मुंडौ महासुरौ हे चंड हे मुंड बलैर बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वाच ससमानियताम लघु केशेश्वा कृष्यबद्भावा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधै सर्वैर सुरैर विनिहन्यताम तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम आगम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम खष्टो अध्याय। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या के होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूमर लोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ॐ नमश्चण्डिकायै अथ सप्तमो अध्यायः अथ ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं श्रृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यैस्ताङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं काल्हाराबद्धमालां नियमितविरसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीम शंख पात्राम मधुर मधु मदाम चित्रकोदभासी भालाम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूं, वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं, उनके अंक में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख का पात्र लिए हुए हैं, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषि रुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चंड मुंड पुरोगमः चतुरंग बलोपेता युरभ्युदयतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवीं ईषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महती कांचने ते दिष्ट्वा तां समादात मुद्यमं चक्ररुद्यतः आकृष्ट चापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगः तथा कोपं चकारोच्चैर् अंबिका तानरीं प्रति कोपेन चास्यावदनम मशीवर्णम अभूत तदा भ्रकुटी कुटला तस्या ललाट फलका द्रुतम काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषण द्वीपी चरम परिधाना शुष्कमासाति भैरवा। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंडादि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। अति विस्तार वदना जेवा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नाना पूरित दिंगमुखा सा वेगे नाभिपतिता घातयन्ति महासुरान सैन्ये तत्र सुरारीणाम अभ्यक्षत तद्बलम पाश्री ग्रहणांकुश ग्राहियोद्घंटा समन्वितान समादायै घस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान तथै योधम तुर्गै रथम सारथिनाम सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश चर्व्यन्त्यति भैरवम् एकम जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम पादेनाक्रम चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि सशस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर् मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षच्चान्यैन् अन्याश्चातैडे तथा असिना निहतः केचित् खटवांग ताडितः जगम उर्विनाशमसुरा दंताग्रह विहत्तास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं असुराणां निपातितं दिष्ट्वा चंडो अभिद्रुद्राव ताम कालीमति भीषणां। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर और भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। सर्वर्षैर महाभीमैर भीमाक्षीं ताम आसुरा छादयामास चक्रैश मुंडा क्षिप्तैः सहस्रशा तानि चक्राण्येकानि विष्मानानि तन्मुखं बभ्रु यथार्क बिंबानि सुबहूनि घनोदरम ततो जहासाति रुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांत्र दुर्दर्शय दशनोज्जला उत्थायत महान सीत हम देवी चंडमधावत गृहीत्वा चाशिकेशेषु सिरस्ते नासिनाच्छिनत अथ मुंडो अभ्यधावत्ताम दिष्ट्वा चंडम निपातितम तमप्यपादत भूमौ सा खड्गाभ्यतम रुषा हत शेषम तथा सैन्यम दिष्ट्वा चंडम निपातितम मुंडम च सुमहावीर्यम दिशो भेजे भयातुरम शिरश्चंडस्य कालेच गृहीत्वा मुंडमेवच प्राह प्रचंडाट्टहास मिश्रम अभेत्य प्रचंडिकाम मया त्वात्रौ प्रहितो चंड मुंडो महापशु युद्धि यज्ञे स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्राकर्मी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बाकी बची हुई दानवों की सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि रुवाच तावानीतौ ततौ दृष्ट्वा चंड मुंडौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचः यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये चंड मुंड वधो नाम सप्तमो अध्याय। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अधष्टमो अध्याय अथ ध्यानम्। ओम अरुणाम करुणावतारंगितांक्षी धृतपाशांकुशवाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरमहित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमादि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष शोभायमान हो रहे हैं। ओम ऋषि रुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्व सुरेश्वरः तथा कोप्राधीन चेत्तः शुंभा प्रतापवान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशसः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः खड्शीतृदायुधा कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटि वीर्याणि पंचाशद असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञाः कालका दौर्हृदा भौर्या कालके यास्तथा असुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितामम् इत्याज्ञाप्य स्वरपतिः शुंभो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सस्रैर बहुभिर्वृताः। आयांतम चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनैः पूर्यामास धरणी गगनांतरम्। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दौरहृद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। तथा सिंहो महानादम अतीव कृत्वा नृप घंटास्वनेन तन्नादम अंबिका चो बृहन्यत धनुर्जा सिंह घंटा नाम नादा पूर्ति मुखा निनादैर भीष्णैः काली जिग्गे विस्तारितानना। हे राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तम निनादम उपश्रुत्य दैत्य सैन्य चतुर्दिशम देवी सिंह तथा काली स्रोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदुषाम भवाया मृसिंहानाम अति वीर बलान्विता ब्रह्मेश गोविष्णुनाम तथेन्द्रस्य च शक्त्या श्रीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्च चंडिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देव हि तच्छक्ति सुरान योधुमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षिसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर् ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूर वरवाहना योधुम अभ्यायो दैत्यानंबिका गुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर् गरुडो परिसंस्थिता शंख चक्र गदा शारंग खरगहस्ताभ्युपाययो यज्ञ वाराहमतलम् रूपम या विभ्रतो हरे शक्ति साप्ययायो तत्र वाराहीं विभ्रति तनुम नारसिंहीं नरसिंहस्य विभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। उस तुमर नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकण पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह भगवान के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरने लगे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी स्वरूप था। तथा परिवृतिस्ता भी ईशानो देव शक्ति भी हन्यन्ताम असुरा शीघ्रम मम प्रीत्या अह चंडिकाम ततो देवी श्रीरातु विनिष्क्रांताति भीषणा चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवाशत निनादिनी साचा धूम्रजटलम ईशानम अपराजितः दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयौ ब्रूहि शुंभम निशुंभम च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम देवः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादच्छेद भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदा गच्छत् तृप्त्यन्तु मच्छिवः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साक्षातिमागतः ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यतम् महासुरः अमर्षा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थितः तथा प्रथम मेवाग्रे शरशक्ति ऋष्टि वृष्टि भी बवर्षरुद्धतामर्षास्ताम देवी ममरारयः। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति स्वरूप प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपिराजता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। साचतान प्रहितान बाणाच्छूल शक्ति प्रश्वधान चिच्छेद लीलायद्धमात् धनुर्मुक्तैर्महेषु भी तस्याग्रस् तथा काली शूल पाता विदारितान खटवांग योथितांश्चरीन कुर्वती व्यचरत्तदा कमंडलु जलाक्षेप हतवीर्यान हतौजसः ब्रह्माणी चाक्रोच्छत्रून येन येन समधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान जंघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपन इंद्री कुलश्पातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारतः पृथिव्यां रुधिरौग प्रवर्षिणः तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या नपन्तश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदातांश्चन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ ननादपूर्ण दिगंबरः चण्डाट्टहासैर्सुरः शिवदूत्यभिदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्चखादात्तासदः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दिष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधुम अभ्याययो क्रुद्धो रक्त बीजो महासुरः। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए वाण शूल शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथनी की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महान दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। रक्तबिंदुर यदा भूमौ पतत यस्य शरीरिता समुत्पतती मेदिन्याम तत्प्रमाणस्तदासुरा युधेसा गदा पाणिर इंद्र शक्त्या महासुरा ततश्चैन्द्री सवज्रेण रक्तबीज मताड़यत कुलशे नास्तस्याशु बहु सुस्राव शोणितम समुत्तस्थूस्ततो योधास तद्रूपास्तत्प्राक्रमः यावन्ता पतितास्तस्य श्रीरा रक्तविन्दवः तावन्ता पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवः समं मातृभिर्यत्युग्र शस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जातासहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजघानः गदया ताड़यामास इन्द्रितम सुरेश्वरम वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुद्रिस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम तत्प्रमाणैः महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिनः माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम साचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मात्री कोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे थे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस पुनः उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। तस्या तस्य बहुधा शक्ति शूलादि विभुवि पपात्यौ भय रक्तौघ स्तेना संचत्सो असुरः तैश्चासुर शिक्षम्भूतैर् सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमम् तान् विष्णन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु मच्छस्तरपात संभूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुपन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीण रक्तो गमिष्यति। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पतस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम ततो देवी शूलेनाभि जघान्तम् मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो असाव जघानात् गदया तत्र चंडिकाम् नाचास्या वेदनाम चक्रे गदा पातो अल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुसस्राव शोणितम् यतस्ततस्वक्त्रेण चामुंडा संप्रीतच्छति मुखे समुद्गता तेस्या रक्तपातान् महासुरः ताश्चखादात् चामुंडा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसीवृष्टिभि जघान रक्तबीजं तम् चामुंडा पीति शोणितम् सपपात् मही पृष्ठे शस्त्रसंग समाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षम अतुलम अवापु स्त्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रृंगमदो धता। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमो अध्याय। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वह रक्त नीचे गिरता चामुंडा उसे अपनी जीभ पर संभाल लेती। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नाम का यह आठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ॐ नमश्चण्डिकायै अथ नवमोऽध्याय अथ ध्यानम्। ॐ बन्धूकाञ्चन्यभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कशौचवर्दां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेश मनीषम बपुराक्ष्यामि। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वरण बंधूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजौवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवतामहम् देव्याश्चैत्र महात्म्यम् रक्तबीज बधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। राजा ने कहा, हे भगवन, आपने रक्त बीज के बध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि रुवाच चकार कोप मतुलम रक्त बीजे निपातिते शुंभासरो निशुंभश्च हत्येशन्येषु चाहवे हन्यमानम महासैन्यम विलोक्यामर्ष मुद्वहन अभ्यधावन निशुंभोत मुख्यया सुरसेनया तस्यागस्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वोश्च महासुरः संदष्टौश्च पुटा क्रुद्धा हन्तु देवी उपायहु आजगाम महावीर्यः शुंभो अपि सुबलैर्वितः निहन्तु चंडिकाम कोपात् कृत्वा युद्धम तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुंभ निशुंभयोः सर्वर्षम अतीवोग्रम मेघ्योरिव वर्षतौः चिच्छेदास्ता छांस्ताभ्याम चंडिका स्वश्रोत्रैः ताड़यामाश्चांगेषु शस्त्रौघर सुरेश्रौः निशुंभो निशितम खड्गम चरम चादाय सुप्रभम अताड़यन मूर्धनी सिंहम देव्या वाहनमुत्तमम। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए प्रयत्नशील थे। महाप्राक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्याधिपतियों को भारी चोटें पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। ताड़िते वाहने देवी क्षुरपेणासि मुत्तमम निशुंभस्याशु चिच्छेद चरम चाप्यष्ट चंद्रकम छिन्ने चरमणि खड़गे च शक्तिम चिक्षेप सो असुरः तामपश्चित द्विधा चक्रे चक्रेणाभि मुखागताम कोपाधमातो निशुंभवत शूलम जग्राह दानवः आयातम मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्ण्यत आविद्यात गदाम सोऽपि चिक्षेप चंडिकाम प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागतः। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई किंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तथा परशुहस्तम तमायांतम दैत्य पुंगवम आहत्य देवी बाणौघैर् पातयत भूतले तस्मिन् निपतते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातर्यति संक्रुद्धा प्रयौहन्तुम् अम्बिकाम् सारथस्थस्तथात्युच्चैर् गृहीत् परमायुधैः भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर् व्याप्य शेषाम् भवौ नभा तमायन्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जया शब्दम् चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूर्यामास कुकुभो निज घंटा स्वनेन च समस्तैत्य सैन्यानाम् तेजो वधविदायना तथा सिंहो महानादैश त्याजिते भमहामदैः पूरे आमास गगनम गाम तथैव दिशोदश तथा काले समुत्पत्य गगनम क्षमामताड़यत कराभ्याम तन्निनादीन प्राक्स्वनास्ते तिरोहता उस भयंकर प्राक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द प्रकट किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर्ण हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टहासम शिवम शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुंभः कोपं परं ययौ दुरात्मं स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्तभिहितं देवैराकाश संस्थितैः शुंभेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणः आयान्ति वहिनर्कूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयंत्रं निर्घात निस्वनो घोरो जितवान वनीपते शुंभमुक्ताक्षरान् देवीं शुंभस्तत्प्रहीतांक्षरान् चिच्छेद स्वश्रैरुग्रैः शतशो अथ सहस्रशः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रह खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो हे देवी, तुम्हारी जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे, हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तथा सा चंडिका क्रुद्धा शूले नाभिजघान्तं सा तदाभितो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुंभा संप्राप्य चेतना मात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरणीं तथा पुनस्कृत्वा बाहूनां आयतम धनुजेश्वरः चक्र आयुधेन दितिजच्छादयामास चंडिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदे तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकां अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेनां समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चंडिका खड़गेन सिद्धारेण सच शूलं समाददे। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा, उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही नष्ट कर डाला। तब उसने शूल हाथ में उठा लिया। शूल हस्तम समायंतम निशुंभ ममरार्दनम हृदय विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चंडिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृद्यान्नि श्रितो अपरा महाबलो महावीरस्तिष्ठेति पुरुषो वदन तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो असावप तद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रं दंष्टु क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नेशुर महासुरः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोयनान्येनराकृतः। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल के विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह ऐसा कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठटाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुंड घातेन केचिच्चूर्णी कृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृतः वज्रेण चेन्द्रिय हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेशुर सुरः केचिन्नष्टः महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभ वधो नाम नवमो अध्याय। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक नवमा अध्याय पूर्ण हुआ।